नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा, किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी या आपूर्ति श्रृंखला को हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों से सामूहिक रूप से एआई के उपयोग को जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और विंबलडन टेनिस में यूकी भांबरी और उनके अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे आज शाम पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजनाओं में मांग आधारित निर्णय लेने, वित्तीय स्थिरता और अच्छी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में लोगों की प्रगति और कल्याण काफी हद तक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर निर्भर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एआई को मानवीय मूल्यों और क्षमता को बढ़ाने के माध्यम के रूप में देखता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के लिए एआई के मंत्र पर काम करते हुए भारत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन सहित कई क्षेत्रों में एआई का व्यापक और सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स के नेताओं के घोषणा पत्र में ग्लोबल साउथ के देशों की अधिकतर चिंताओं को शामिल किया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों में सुधार की आवश्यकता की बात जोरदार तरीके से रखी। श्री मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है और बहुध्रुवीय तथा समावेशी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है। एक सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि समकालीन वास्तविकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organization. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institution must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times.
Dammu Ravi ne ये भी कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पहलगाम आतंकवादी हमलों की निंदा सभी देशों ने जोरदार तरीके से की। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र भारत के पड़ोसी देश को एक कड़ा संदेश देता है।
Honorable Prime Minister's visit assumes added importance and the fact that India is a founding member of the BRICS. India had always participated in the BRICS summit and also the fact that next year India will be taking over the chair. Honorable Prime Minister's participation assumes greater significance and importance given that background.
और अब बात करते हैं रियो डी जेनेरो में मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, इस सम्मेलन में भारत की भूमिका कितनी अहम है?
जी विशाल, देखिए ब्रिक्स में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। इसका यह भी कारण है कि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और साथ में अगले साल उसको ब्रिक्स की अध्यक्षता भी प्राप्त होने वाली है, तो इसी कारण से भारत इस श्रृंखला में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और आर्थिक संबंधों के सचिव जो हैं दमी रवि, उन्होंने भी प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से ब्रिक्स सम्मेलन में संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो निर्णय लिए गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में उसको आगे बढ़ाने में भी भारत अग्रसर रहे।
आज सम्मेलन में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, क्या क्या निर्धारित हैं?
देखिए, आज दूसरे दिन ब्रिक्स सम्मेलन में परिसर COP30 सम्मेलन और वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर ब्रिक्स राष्ट्रों के नेता चर्चा करेंगे। परिसर की संरक्षणा से जुड़े भारत द्वारा लिए गए ठोस कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। जनमानस और भूमि की के हित में काम करते हुए विकास के मार्ग में बढ़ने पर वह अपना सुझाव देंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रकोप निर्वहन से जुड़े व्यवस्था का समाधान, बायोफ्यूल सहयोग, बिग कैट योजना की जानकारी दी जाएगी। जी, ब्राजील में भारत के एम्बेसडर जो है दिनेश भाटिया, उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के स्टेट विजिट के दौरान जुलाई 8 तारीख को 4 MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों राष्ट्र भारत और ब्राजील काउंटर टेररिज्म, गुप्त वार्ता का आदान प्रदान, रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि अनुसंधान के सहयोग से जुड़े दोनों राष्ट्रों के बीच समझौता होगा, ये जानकारी उन्होंने दी।
जी सुधींद्र, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ब्रिक्स की अमरीका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ब्रिक्स देशों द्वारा अमरीकी आयात शुल्क में वृद्धि की निंदा किए जाने के बाद ट्रंप ने ये टिप्पणी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। श्री सिंह ने कहा कि विदेशों से आयात किए जाने वाले अधिकांश रक्षा उपकरण अब देश में ही बनाए जा रहे हैं।
हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है।
रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आर्थिकी के महत्व पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय देशों सहित लगभग सभी प्रमुख देश अपने रक्षा व्यय में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं और उसके पीछे कारण यही था। आज भारत सहित पूरा विश्व डी आर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र के तीन स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। श्री धनखड़ ने कहा कि अपने क्षेत्र में हर संस्थान सर्वोच्च है। एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। केरल के कोच्चि में आज राष्ट्रीय विधि एवं उन्नत अध्ययन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को शांति और सद्भाव पर आधारित विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति केरल की 2 दिन की यात्रा पर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 33,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइन बिछाई गई हैं। उन्होंने कहा कि NDA शासन में और अधिक अत्याधुनिक ट्रेनों और तकनीक के साथ रेलवे में बदलाव देखने को मिल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की के 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मक्का का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है।
बंगाल में बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है, ओवरऑल अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हमको आईसीआर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है और लगभग 30 बायोफोर्टिफाइड भी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके और समय को लेकर आयोग के कदम को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए आज भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
अति भारी बारिश का जो वार्निंग है उत्तर उड़ीसा का आंदरून क्षेत्र और उसी के साथ साथ सटा हुआ जो छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश के लिए है और जो सराउंडिंग एरिया है वो भारी बारिश का ऑरेंज कलर वार्निंग है। जैसे GWP है, वेस्ट मध्य प्रदेश है, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत में मेनली जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फर्दर जैसे राजस्थान, पूर्व राजस्थान और गुजरात, यहाँ ऑरेंज कलर का हैवी रेनफॉल वार्निंग है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र के लिए हम लोग येलो अलर्ट रखा है, लाइट टू मॉडरेट ऐसे जो रेन चल रहा है कंटिन्यू करेगा क्योंकि मानसून ट्रफ काफी पास है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के जबलपुर, मंडला, शहडोल और डिंडोरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
भारी बारिश के चलते जबलपुर के बरगी बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जबलपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी में एक दिन में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। शहडोल जिले के कई घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं डिंडोरी जिले में कई जगहों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला और दमोह जिलों के लिए आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 5वां दिन है। ये यात्रा इस महीने की 3 तारीख से शुरू हुई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न और उत्साह के माहौल के बीच कल शाम तक लगभग 70,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। हजारों यात्री बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के दोहरे मार्गों से पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 13,300 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इससे पहले आज 373 वाहनों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, साधुओं, साध्वियों सहित 8,600 से अधिक यात्रियों का जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 2 अलग अलग काफिलों में रवाना हुआ। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बात खेलों की करते हैं। विंबलडन टेनिस में आज भारत के यूकी भांबरी अपने अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ पुरुष डबल्स के 3रे राउंड में खेलेंगे। भांबरी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी भी दौड़ में बने हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला को हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स से सामूहिक रूप से AI के उपयोग को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।